शिवी आर्य को सबसे छुपाकर इंडियाना रेस्टोरेंट लेकर आई थी। उन्हें वहां पहुंचने में लगभग 2-2.5 घंटे लग गए। इंडियाना आते ही दोनों बाहर निकले। आर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसे खुश देखकर शिवी को भी अच्छा था। चलो अंदर चलते हैं, आर्य ने शिवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो उसका हाथ पकड़ने से झिझक रही थी। आर्य फिर बोला, रेस्टोरेंट में एम्प्लॉयज के सामने थोड़ा शो ऑफ तो बनता है। और तुम कब से शो ऑफ करने लगे, शिवी ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे लिए कुछ भी, चलो अब ज्यादा मत सोचो, आओ मेरे साथ। आर्य के कहने पर शिवी ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए। रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर सिंह के अलावा वो लड़की पिया भी वहीं मौजूद थी, जो उस दिन उनकी लड़ाई की गवाह थी। पहले आर्य का जब भी मूड खराब होता था तब वो वहां आ जाता था। मिस्टर सिंह ने आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो उन्हें भी अच्छा लगा। वहीं उनके साथ काम कर रही पिया का ध्यान शिवी की तरफ गया। ये दोनों और एक साथ, ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन इनके साथ बहस कर रही थी। पिया उन्हें देखकर हैरान हो रही थी। हाँ वही है, और अब दोनों लड़ भी नहीं रहे, मिस्टर सिंह ने जवाब दिया। शिवी ने पूरे रेस्टोरेंट में अपनी नज़र घुमाई, वहां ज्यादा लोग नहीं थे। वो दोनों उस दिन जिस टेबल के लिए लड़ रहे थे वो भी खाली थी। शिवी ने उस तरफ इशारा करके कहा, क्यों ना हम उसी जगह पर बैठें, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, उस दिन भी तुमने उस जगह के लिए मुझसे बहुत बहस की थी। नहीं अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आर्य ने मुस्कुराकर कहा और शिवी के साथ वहां गया। उसने शिवी के लिए चेयर खींची और उसके सामने बैठ गया। मिस्टर सिंह और पिया उन दोनों की तरफ हैरानी से देख रहे थे। पिया ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मेरा तो दिल ही टूट गया, क्या कहा था उस दिन उन्होंने, यहाँ पर उनके अलावा किसी और को नहीं बैठने देना है, और आज खुद ही किसी और को ले आए हैं। लगता है इस टेबल के साथ साथ उनके दिल में भी इस लड़की ने जगह बना ली है, मिस्टर सिंह ने बड़बड़ाकर कहा। पिया उनके कहने का मतलब समझ पाती या कुछ पूछ पाती उससे पहले मिस्टर सिंह उनकी टेबल के पास गए। गुड इवनिंग सर, आर्य ने मुस्कुराकर उसके गुड इवनिंग का जवाब दिया और फिर कहा, यहाँ काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें बता देना ये मेरी फ्रेंड है, नेक्स्ट टाइम ये जब भी आए इसका इतना ही ख्याल रखना जितना मेरे आने पर करते हो। मिस्टर सिंह ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर एक नज़र शिवी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कुराहट थी। अच्छा बताओ तुम क्या खाना चाहोगी, आर्य ने पूछा। वैसे तो मैं साउथ इंडियन हूँ लेकिन पंजाबी फूड के लिए मेरा प्यार मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ऐसा कीजिए ना, हमारे लिए राजमा चावल ले आइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसका ध्यान आर्य की तरफ गया, वो भी उसके साथ था। शिवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने तो बताया ही नहीं तुम्हें क्या चाहिए। इन्हें भी वही खाना है जो आपने ऑर्डर किया है, आर्य के बजाय मिस्टर सिंह ने जवाब दिया और उनका ऑर्डर तैयार करने के लिए चले गए। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा इस जगह से कुछ खास लगाव है, क्या मुझे बताओगे इस जगह और इस टेबल में ऐसा क्या खास है जो तुम इतने पॉजिटिव हो। खाना आने का इंतजार करते हुए शिवी इधर उधर की बातें करने लगी। कुछ नहीं, बस ये जगह मुझे किसी की याद दिलाता है और मैं इस टाइम उसकी बात नहीं करना चाहता। तुम अपने बारे में बताओ ना, तुमने कहा था तुम्हारी मॉम ने किसी और से शादी कर ली, इस तरह तो तुम्हारे दोस्त और सब पीछे छूट गए होंगे। आर्य ने बात को बदलकर शिवी की तरफ कर दिया। शिवी भी शुरुआत में उसे अपने पापा के बारे में नहीं बताना चाहती थी, उसे डर था कि बाकियों की तरह वो भी उसे एक मर्डरर की बेटी ना समझ ले। मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, जो थे वो पीछे छूट गए, बस अब एक दोस्त बचा है, उससे कभी कभार वीडियो कॉल पर बात हो जाती है। मुझे यहाँ आए हुए 1.5 साल हो जाएंगे, अब मैंने इस जगह को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा तुम्हारे डैड की मौत हो गई थी क्या, जिसके बाद तुम्हारी मॉम ने किसी और से शादी कर ली, आर्य ने पूछा। नहीं, उन दोनों की बनती नहीं थी और उन्होंने डिवोर्स ले लिया। मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती थी पर कुछ मजबूरियों के चलते नहीं रह पाई और मुझे मॉम के साथ यहाँ आना पड़ा। वो मेरे स्टेप फादर से इंडिया में ही मिली थी, उन्होंने डिवोर्स और वहाँ से निकलने में उनकी काफ़ी हेल्प की थी। वो एक अच्छे इंसान हैं पर मेरे पापा की जगह कभी नहीं ले पाएंगे, शिवी ने बताया। हाँ कोई किसी की जगह नहीं ले पाता है, आर्या बोला। हाँ कोई किसी की जगह क्यों लेगा, सबकी अपनी जगह होती है, शिवी ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। मैं भी किसी की लाइफ में किसी और की जगह नहीं लेना चाहती बल्कि अपनी नई जगह बनाऊंगी, क्या पता मेरा रिश्ता पहले वाले से ज्यादा स्ट्रांग हो। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तभी उनका खाना आ गया। ये पहली बार था जब आर्य इंडियाना रेस्टोरेंट में किसी लड़की के पास बैठा था और उसे एक मिनट के लिए भी एली की याद नहीं आई। वो शिवी के साथ काफी एंजॉय कर रहा था। वहीं काफी देर तक शिवी बाहर नहीं आई तो ध्वनि आर्य के वार्ड में गई। उन दोनों को वहां ना देखकर वो सब समझ गई और उसने तुरंत शिवी के मोबाइल पर कॉल किया। दोनों के दोनों जहां भी हो अभी इसी वक्त हॉस्पिटल में आओ, एंड इट्स माय ऑर्डर, ध्वनि चिल्लाकर बोली। मैं वहां बोर हो गया था और मैं उस जगह पर अब वापस नहीं आऊंगा, शिवी के बजाय आर्य ने जवाब दिया। तुम दोनों कितने बुरे हो, मेरे यकीन का फायदा उठाकर यहां से निकल लिए, कल तुम्हारे दादू आएंगे तो वो मुझे डांट लगाएंगे। ठीक है, फिर सुबह आ जाऊंगा, तब तक के लिए संभाल लेना, कहकर आर्या ने कॉल कट कर दिया। तुमने उसे सुबह आने का क्यों कहा? शिवी ने हैरानी से पूछा। हम यहाँ से जाएंगे तो काफी लेट हो जाएगा, ऊपर से तुम्हें भी ड्रॉप करना होगा, तब तक सुबह हो ही जाएंगे। पर मेरे पास एक बेहतर प्लान है।
और वो क्या?
तुम मेरे घर जाना चाहोगी? आर्या ने अचानक पूछा। तुम ओबेरॉय हो ना? मैंने ओबेरॉय मेंशन को अब तक फोटोज में ही देखा है, सुना है बहुत खूबसूरत है। तो मुझे अपने घर लेकर जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा तुम हॉस्पिटल से गायब हो। बाकी हाँ, मेरी बकेट लिस्ट में ओबेरॉय मेंशन को घूमना लिखा है। शिवी की इच्छा जानकर आर्या हल्का सा हंसा और फिर कहा, शिवी मैं ओबेरॉय मेंशन में नहीं रहता। हाँ, मेरा खुद का अलग घर है, पर फिर भी मैं, खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। उन दोनों ने वहां से कैब ली और आली के घर जाने के लिए निकल पड़े। हॉल में मेरी और आली की फोटो लगी है, उसे देखने के बाद शिवी सब समझ जाए, शायद वहीं से मुझे बात करने का चांस भी मिल जाए और मैं इसे आली के बारे में बता सकूं, आर्या ने अपने मन में कहा। इतनी रात को इसके साथ जाना सही रहेगा क्या? मैंने घर पर भी किसी को नहीं बताया, कल ऑफिस भी जाना होगा, इसके साथ सब कैसे मैनेज होगा? जाने के लिए हाँ तो कह दी, पर सुबह, ओ गॉड, कहाँ फंस गई हूँ, मुझे इसके साथ रहना है और रह भी नहीं सकती, शिवी ने आर्या की तरफ देखकर सोचा। दोनों अपनी अपनी कश्मकश में खोए हुए थे। लगभग 40 मिनट बाद आली का घर आ चुका था। वो इलाका लंदन से थोड़ा बाहर की तरफ बना हुआ था, इसलिए वहां ज्यादा ठंड थी। तुम इस जंगल में रहते हो? शिवी ने कांपते हुए कहा। बाहर निकलते ही ठंड के मारे वो ठिठुरने लगी। हाँ, इसी जंगल में रहता हूँ, तभी आधी रात को भूख लगने पर खुद ही खाना बनाना पड़ता है। चलो आओ अंदर चलते हैं, आर्या आगे था, जबकि शिवी उसके पीछे इधर उधर देखते हुए आ रही थी। शिवी ने देखा वो घर भले ही दिखने में छोटा था, पर काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। अंदर जाने पर उसने पाया कि घर काफी मॉडर्न तरीके से अपडेट भी किया हुआ था। अंदर का हीटिंग सिस्टम भी काफी अच्छा था। वहाँ रहते हुए शिवी को बिल्कुल ठंड महसूस नहीं हो रही थी।
बाहर से देखने से लगता नहीं है ये घर इतना अपडेटेड है क्या? तुम यहाँ क्यों रहते हो? शिवी ने हैरानी से पूछा, क्योंकि ये घर, आर्या बोलते हुए रुक गया। उसकी नज़र सामने की दीवार पर पड़ी। वहां एली और आर्या की फोटो होती थी, पर अब वो दीवार खाली थी। क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये घर किसका है और तुम यहाँ क्यों रहते हो? शिवी ने फिर पूछा। बस ऐसे ही, ये घर भी मेरा ही है। मैं यहाँ तब रहता था जब मैंने पहली बार ओबेरॉय मैंशन छोड़ा था। यहाँ रहते हुए ही मैंने डिजायर्स की नींव रखी और उसे इतना सक्सेसफुल बनाया, आर्या के बताते ही शिवी बोली। तब तो ये घर सच में बहुत स्पेशल है। तुम्हें पता है मुझे इस तरह की जगह हमेशा से पसंद है, जो शहर की भीड़भाड़ से अलग हो। ऐसी जगह पर वेकेशन मनाने का एक अलग ही मजा है, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता। उसकी बात सुनकर आर्या ने हल्की मुस्कुराहट दी। वो अभी भी हैरान था कि उसकी और एली की फोटो कहाँ गई। कहाँ खोए हो? उसे चुप देखकर शिवी ने पूछा। कहीं नहीं, चलो तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। आर्या शिवी को घर दिखाने लगा। दोनों साथ में अच्छा टाइम बिता रहे थे। देर रात होने पर शिवी लिविंग रूम में काउच पर सो रही थी, जबकि आर्या अपने कमरे में था। देर रात हो जाने के बावजूद भी विक्रम जी को नींद नहीं आ रही थी। वो टहलने के लिए घर की टेरेस पर आए। उन्होंने वहां देखा शौर्य और मायरा भी वहीं पर थे। ऐसे तो तुम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है, और अब यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? उन्होंने उन दोनों के पास आकर पूछा। हाँ, हमारी नहीं बनती, पर फिर भी हम भाई बहन हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमसे बात करे। किसी को किसी की भी नहीं पड़ी, शौर्य ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, दुश्मन से ही सही, लेकिन एक दूसरे से बात करके दिल तो बहला सकते हैं ना। वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं दादू? ठंड काफी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मायरा ने अपने पास उन्हें बैठने की जगह दी। ऊपर टेरेस पर एक तरफ गार्डन बनाया हुआ था, तो दूसरी तरफ बैठने की अच्छी खासी जगह की हुई थी। वो दोनों वहां कैंप फायर जलाकर बैठे थे। कुछ नहीं, सोच रहा हूँ सारा परिवार एक साथ रहे तो कितना अच्छा हो, विक्रम जी बुझी आवाज में बोले। आपको इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं है दादू, आपकी ये ख्वाहिश थोड़े दिनों में पूरी होने वाली है, शौर्य ने उन्हें दिलासा दिया। उसका साथ देते हुए मायरा ने कहा। हाँ, अब तक हमें लगता था प्लानिंग प्लॉटिंग में हम दोनों ही माहिर हैं, पर डैड भी कुछ कम नहीं है। काफी अच्छा प्लान बनाया है उन्होंने ब्रो को वापस बुलाने के लिए। अब तो उनकी शादी भी होने वाली है, तो आपका हैप्पी फैमिली और सबका एक साथ रहने का सपना पूरा होने वाला है। सब होंगे, लेकिन वो तो फिर भी नहीं होगी, विक्रम जी के चेहरे पर उदासी थी। आज वो किसी खास को कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे थे। शौर्य और मायरा ने कभी भी उन्हें इतना उदास नहीं देखा। आर्या के घर छोड़ने के बावजूद भी वो काफी कूल बिहेव कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ से देखा और उनसे सब पूछने का सोचा। आप किसकी बात कर रहे हैं दादू? हमारी फैमिली के सभी मेंबर अब एक साथ आने वाले हैं, फिर कौन रह गया जिसकी कमी आपको महसूस हो रही है? शौर्य ने पूछा। कहीं आप रमनदीप दादी की तो बात नहीं कर रहे? मायरा ने अंदाजा लगाते हुए कहा। रमनदीप का नाम लेने पर विक्रम जी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसे अब तक तुम दोनों नहीं जानते। तुम दोनों तो क्या, तुम दोनों की मॉम भी नहीं जानती, विक्रम जी ने जवाब दिया। ऐसा कौन है जिनके बारे में हम नहीं जानते? और आप जिस तरह से बता रहे हैं उसके बाद तो पेट में बटरफ्लाइज होने लगी हैं। चलिए जल्दी बताइए कौन है वो, शौर्या ने पूछा। बंधन, मैं बंधन की बात कर रहा हूँ, विक्रम जी ने जवाब दिया। उन दोनों के जवाब अपने शौर्य और मायरा को बुरी तरह चौंका दिया। बंधन तो आर्या की माँ का नाम था और वो अब इस दुनिया में नहीं थी।